मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। आज 10 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं काजल गुप्ता बहराइच उत्तर प्रदेश से, हेमलता सिंह मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, शकुन सिंह आपका गांव है इस्माइलपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और यदुवेंद्र सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को नियमित रूप से दिया करता हूं। तो सूचनाएं कुछ इस तरह की हैं कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन कल यानी कि शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसे कि अब तक मिलती रही है। साथ ही योजना के आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे पढ़ने के लिए, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का, और ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और खासकर इसमें हम लोग 2 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला तो यह है कि उस ऐसे टॉपिक से लिया जाए और उसकी फ्रेमिंग भी इस तरह से की जाए कि वो सिविल सर्विस में आपको सीधे सीधे मदद पहुंचा सके, और दूसरा यह भी है कि आप इस तरीके से आंसर लिखें कि उससे आपकी कैपेसिटी बिल्टअप हो सके। तो आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ बहुत ही मूलभूत बेसिक बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने सुना भारत और चीन अपने व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। देखिए मैं तो जब हम व्यापार संतुलन की बात करते हैं तो बेसिकली व्यापार संतुलन है क्या, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जैसे मान लीजिए आप और मैं व्यापार कर रहे हैं, अगर आपसे मैं चीजें ज्यादा लेता हूं लेकिन अपनी चीजें मैं आपको कम भेज पा रहा हूं, या मेरी आप कम चीजें मंगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 1000 रुपए की चीज मुझे दे रहे हैं लेकिन मुझसे आप केवल 400 की चीज ले रहे हैं, तो 600 रुपए की यहां कमी आ गई, तो ये मेरे पक्ष मेरी तरफ व्यापार असंतुलन हो गया। यानी कि संतुलन तब होगा जब आप भी 1000 की चीज मुझे दें और बदले में मैं भी आपको 9.5, 1000, 1050 मतलब उसी के आसपास आपको भी सामान भेजूं, यानी कि एक संतुलन की स्थिति है। भारत और चीन के बारे में तो आप जानते हैं कि चीन तो अभी बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनता चला जा रहा है, सभी मार्केट दुनिया के जो है वो चीन के सामान से भरे पड़े हैं, तो इसीलिए जहां चीन का सामान आ रहा है जिन देशों के पास उनका चिंतित होना स्वाभाविक है कि भाई हम बदले में उनको कुछ भी नहीं भेज पा रहे हैं तो हम उसकी जो भरपाई होगी या उसका जो भुगतान होगा वो कैसे करेंगे, तो स्वाभाविक आपको भुगतान करेंसी में करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, भुगतान तो करना ही पड़ेगा, लेकिन देश इस बात को पसंद करते हैं कि अगर हम उनका सामान मंगा रहे हैं तो बदले में वे भी हमारा सामान मंगाए, तो सामान का सामान से भुगतान हो जाए, इसे हम कहते हैं एक तरह से सरल शब्दों में व्यापार संतुलन। मित्रों, मैं आज आपको एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं जो जजों की नियुक्ति को लेकर के है। आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी कि पहले जज जो सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था है जजों की नियुक्ति के लिए, मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ है मोटे तौर पर जो जजेज अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो जजों की नियुक्ति भी ये जज ही करते हैं, एक जज तो नहीं करते, हालांकि वो कॉलेजियम है, एक ग्रुप है कह लीजिए। यहां पर जो प्रश्न उठाया गया है और ये लंबे समय से बहस का मुद्दा भी है, लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है कि जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा की जाती है, हालांकि फॉर्मल जो ऑर्डर नियुक्ति होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ जजों के नाम राष्ट्रपति के पास भेज देता है या अकेले सरकार के पास भेज देता है, सरकार उसमें से कुछ जो भी उसको ठीक लगता है ओके कर देती है, और अगर उसको कुछ ठीक नहीं लगता है तो उनके नाम वापस सुप्रीम कोर्ट भेज देती है कि हम इनको नियुक्त नहीं कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि उसके बारे में वो फिर से विचार करके उनके नाम को ड्रॉप करती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से उनके नाम को भेज देती है सरकार के पास तो सरकार को मानना पड़ता है, ये हमारी व्यवस्था है। एक विचित्र सी बात है कि दुनिया के ज्यादा यहां तक कि अगर हम डेवलप्ड कंट्री ले, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, तो वहां ऐसा नहीं है, वहां जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट करती है। अब संकट यह पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट नियुक्ति करने लगे तो जो न्यायालय की स्वतंत्रता है वो कितनी इंटैक्ट रह पाएगी। आप देखिए जैसे कि अभी ही चुनाव आयोग को लेकर बात हो रही है, इस बार चुनाव आयोग एक तरह से संदेह के घेरे में आ गया है कि बहुत ही तटस्थता और निष्पक्षता से वो काम नहीं कर रहा है। तो इस पर भी जो राजनीतिज्ञ विचारक हैं या जो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कह रहे हैं कि नहीं, जो हमारे जो चुनाव आयोग के जो कमिश्नर हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो सरकार के द्वारा न किया जाए, एक कमेटी के द्वारा किया जाए जिसमें विपक्ष के भी सदस्य हों। अब मुश्किल ये होता है कि अगर सरकार के द्वारा नियुक्त का अधिकार दे दिया जाए तो पता लगता है कि न्यायपालिका के स्वतंत्रता पर वो हस्तक्षेप हो सकता है, न्यायालय पर वो दबाव डाल सकते हैं, और अगर पूरी तरह से न्यायालय के हाथ में छोड़ दिया जाए तो उन पर भाई भतीजावाद का आरोप इससे पहले भी लग चुका है, और साथ ही साथ ये भी लगता है कि भाई उसकी पारदर्शिता नहीं रह जाती। और न्यायालय आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण संस्थान फिलहाल तो खासकर इंडिया के लिए है। तो मित्रों ये बड़े संकट का विषय, इसी चीज बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग भी बनाया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू पावर का प्रयोग करते हुए उसे हटा दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग बन गया तो इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास हो जाएगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित होगी। मित्रों ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक जटिल मुद्दा है, लेकिन फिर भी चूंकि मुद्दा बहुत ज्वलंत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। दोस्तों मैं आज आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं स्टार्टअप को लेकर। स्टार्टअप इसके खासकर परिभाषा को लेकर के स्टूडेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। स्टार्टअप का तो वैसे तो सीधे मतलब हुआ है कि शुरू करना, लेकिन क्या कोई भी कारोबार शुरू किया जाए उसको आप स्टार्टअप मान लेंगे? तो बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, बहुत ही सरल तरीके से, और मैं चाहूंगा कि इसको आप जरूर थोड़ा सा समय लगा करके पढ़ें। दोस्तों आज के करंट कंटेंट में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पर आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है जो हिंदू में छपा था और तमीन बी चावला जी का लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। इसमें उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग में थोड़े से परिवर्तन किए जाएं ताकि वह जो चुनाव कराता है देश के वो और अच्छे से, बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से हो सके। इसको आप जरूर पढ़िएगा, इसकी बिल्कुल भी अनदेखी मत कीजिएगा। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और वो है शेयर बाजार। देखिए मैंने इस विषय को इसलिए चुना है, पहली बात तो यह है कि हर दिन न्यूज में आप शेयर बाजार के बारे में लगभग सुनते ही हैं कि आज इतने पॉइंट गिरा और इतने पॉइंट बढ़ा। दूसरी बात, मैंने अक्सर स्टूडेंट से बातचीत करने के दौरान पाया है कि वो शेयर बाजार के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाते। उनको मालूम है कि सब्जी बाजार में सब्जी बिकती है, कपड़ा बाजार में कपड़ा बिकता है, उसके नाम से चीजें होती, तो ये शेयर बाजार क्या चीज हो गई भाई कि शेयर बिक रहे हैं, ये शेयर कैसे बिकते हैं, क्या क्या होता है? तो मैं आपको बहुत जितना भी समय बचा है बहुत ही बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आप यहां बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि बाजार का मतलब तो जहां खरीदार है और जहां बेचने वाले लोग हैं उस स्थल को बाजार कहते हैं। तो जहां फल बिकते हैं वो फल बाजार हो गया, सब्जियां बिकती है सब्जी बाजार हो गया, और जहां सोना चांदी बिकता है वो सोना चांदी बाजार या सराफा बाजार हो गया। तो स्वाभाविक है कि जो शेयर बाजार होगा उसमें शेयर बिकेंगे, ठीक है। तो अब ये शेयर होते क्या है? देखिए शेयर का हिंदी में सीधी से मतलब है शेयर करना। आप एक कमरे में है, अब आप हॉस्टल में रह रहे हैं, एक रूम में दो लोग रह रहे हैं, तो आप एक कमरे को दो लोग शेयर कर रहे हैं, यानी कि उस कमरे में दो लोगों की साझेदारी है, राइट? तो ये हो गया शेयर करना। तो अब आप उद्योगों में कैसे शेयर करते हैं, है ना? यहां पर आकर के थोड़ा सा वो मामला जटिल हो जाता है कि क्या एक आम आदमी भी जो अरबों खरबों का उद्योग है 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कैसे वो साझेदार बन जाता है? बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो शायद शेयर मार्केट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जिसको भी उद्योग लगाना है या उद्योग लगा चुका है तो अपने उद्योग को बढ़ाना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, धन चाहिए उसको। तो वो धन कहां से लाएगा? वो बैंक से ले सकता है, बैंक भी उसको लोन दे देंगे, लेकिन एक सीमा तक ही बैंक लोन देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो बैंक से लोन लेगा तो उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा, और इनका छोटा मोटा ब्याज, थोड़ा मोटा ब्याज नहीं होता है, ठीक है। या वो अपने साझेदारों से ले लेगा, बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति हैं, अगर उसके उद्योग में वो साझा करना चाहते हैं तो वहां से उसको 50-50, 100-100 करोड़ रुपए एक एक लोग दे देंगे, लेकिन जब वो लोग लेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाते हैं। इस पॉइंट को मैं यहां नहीं उठा रहा हूं। उसको लगता है कि अगर जनता से पैसा लिया जाए तो वो बिना इंटरेस्ट के मिलेगा, उस पर उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो वो अपने शेयर जारी कर देता है जनता के नाम पर कि आप खरीदिए। तो जैसे उसने मान लीजिए कि उसने कहा कि जो एक शेयर की कीमत है ₹10, अब जनता तो थोड़ा सा ही पैसा लगाएगी ₹10, लेकिन उसमें एक नियम वो कर देगा कि कोई भी 100 शेयर से कम के लिए अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि ₹1,000। आप ₹1,000 के शेयर के लिए अप्लाई कर दीजिए, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आपका नंबर आ गया ठीक है तो आपको 100 शेयर वो दे देगा। इसका मतलब है कि चाहे वो ₹1,000 करोड़ की कंपनी है लेकिन उसमें आप ₹1,000 के साझेदार हो गए, हालांकि देखिए उसकी कोई वक्त नहीं है लेकिन है। अब ये जो उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है सो कॉल्ड, अब सर्टिफिकेट का जमाना तो चला गया लेकिन लिखित रूप में आप ₹1,000 उसमें इन्वेस्ट करके उसके भागीदार हो गए हैं। अब ये नहीं है कि अब आप कंपनी में लगे ही रहेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है। अगर आप उसको अपने पास रखे रहेंगे तो देखिए क्या होगा, कंपनी जितना साल भर में अपनी रिपोर्ट देती है कि उसने इतना कमाया, तो जितना कमाएगी उसमें से चूंकि आपने ₹1,000 लगाया है तो उसी अनुपात में आपको लाभ दे देगी, जिसे लाभांश कहते हैं या डिविडेंड कहते हैं। मान लीजिए कि कंपनी को अनुपात के आधार पर लग रहा है कि जिसने ₹1,000 का शेयर लिया है, ₹1,000 की जिसकी भागीदार है, उसने साल भर में ₹100 कमाए, यानी कि 10% कमाई होगी, तो आपको ₹100 वो दे देगी। दूसरा यह होता है कि आप अपने इस शेयर को खरीद इस शेयर को बेच सकते हैं और दूसरी कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी, आपके पास ऐसी कंपनी के शेयर है जो खूब प्रॉफिट कमा रही है, तो हो सकता है कि आपके ₹1,000 के शेयर को कोई ₹2,000 में खरीद ले, उनके बकायदे सिस्टम बने हुए रेट्स आते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इस कंपनी के शेयर बेच करके उस कंपनी के शेयर ले लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में रहेगी, तो आप अपनी कंपनी के शेयर बेच देते हैं, आप दूसरी कंपनी के शेयर ले लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंपनियों के शेयर जहां बिकते हैं, जहां आप खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को कहा जाता है शेयर मार्केट। मुझे लगता है मित्रों की शायद इतनी बात सुनने के बाद आपको कम से कम अनुमान लग गया होगा थोड़ा सा ही सही कि शेयर बाजार ये क्या होता है। और मैं इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट आप सबसे और करूंगा क्योंकि मेरे पास अब वक्त नहीं है, और वो ये कि बेहतर होगा कि मेरी इस बात को सुनने के बाद आप इस टॉपिक को किताब से थोड़ा सा पढ़ लें, देख लें, समझने की कोशिश करें, तो मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक आपके इनिशियल स्टेज पर तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रिंस कुमार, मनमोहन यादव, शुभम महाराष्ट्र से, राम बाबू और अनुपमा शुक्ला, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों शुक्रवार है, 2 दिनों के बाद अब आप सबसे मुलाकात हो सकेगी, तो इन 2 दिनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप मुझे इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।